मौजूदा दौर में जिंदगी गुजारने के लिए लोग कुछ ना कुछ प्लानिंग जरूर करते हैं, या जिस तरह हम प्लानिंग कर रहे हैं ये दुरुस्त है, या हमारी शरीयत हमें कोई प्लानिंग देती है? कभी हमने ये सोचा कि मुझे और आपको क्यों बनाया गया है? हम भी तो मखलूक हैं। हमें अशरफुल मखलूकात कहा है। सारी मखलूक को बनाने का मकसद, मुझे बेमकसद बनाया गया। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसं व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, तो क्या ये समझते हो कि हमने तुम्हें बेकार बनाया है और तुम्हें हमारी तरफ फिरना नहीं? उसी ने पैदा किया, वो फरमा रहा है वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, हमने नहीं पैदा किया इंसान और जिन्नात को मगर इसलिए कि मेरी बंदगी करें। इसमें सूरज तुलू होता है तो ऐलान करता है, अगर कोई आज अच्छा काम करना है तो कर लो, आज के बाद मैं कभी पलट कर नहीं आऊंगा। प्लान तो सहाबा इकराम ने किया, अपनी जिंदगी को डिजाइन अल्लाह वालों ने किया कि अपनी इस जिंदगी में रहकर अपनी आखिरत को बेहतर कर गए। मैं और आप ये प्लान करके जी रहे हैं कि घर हवादार हो, फला चौधरी साहब ने इतना बड़ा घर बनाया, अब मैंने अपने घर को बड़ा बनाना है, और इसी तकोदो में बूढ़े हो गए और जनाब घर बनाते बनाते दुनिया से चले गए। अगर ये प्लान करते कि जिस कब्र में रहना है वो जन्नत का बाग बन जाए।
जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने ना दिया।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद, फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल पाकिस्तान के मशहूर मारूफ शहर फैसलाबाद सरदाराबाद में सुन्नत बरे इज्तिमा का सिलसिला है। मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले इस्लामी भाई हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, बिजनेस कम्युनिटी के साथ साथ ब्यूरोक्रेट्स और दीगर शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले हजरात यहाँ आए हैं। रब्बे करीम आप सबका यहाँ जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बयान शुरू करने से पहले आइए अच्छी अच्छी नीयतें कर लेते हैं। सबसे पहले अच्छी नीयत ये करते हैं कि अल्लाह की रजा के लिए अव्वल त आखिर इज्तिमा में शिरकत करूंगा। गुफ्तगू से बचते हुए, इधर उधर देखने से बचते हुए, मोबाइल फोन के इस्तेमाल से बचते हुए तवज्जो के साथ बयान सुनूंगा। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल व बरकात हैं मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की। बहुत सारी अहादीस, बहुत सारे वाकयात हमें किताबों में मिलते हैं जो दुरूद पाक के फजाइल पर मुश्तमिल हैं, मगर आज जो हदीस पाक मैं आप सबके सामने जो पेश करूंगा, अगर आप तवज्जो से सुनेंगे तो मैं नहीं समझता कि हम में से कोई शख्स ऐसा बचेगा जो कसरत के साथ, एबंडेंस के साथ दुरूद पाक पढ़ने की तमन्ना दिल में ना ले जाए। गौर से सुनिए, मेरे आका ने इस हदीस पाक में एक बहुत बड़ा इनाम, गोया एक बहुत बड़ा समझ लीजिए कि प्राइज जो है वो अनाउंस किया है। जरा गौर से सुनिए, काबे के बदरुद्दुजा तोयबा के शमसुद्दुहा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान अजमत निशान है, जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह ताला उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। फिर फरमाया, जिसने मुझ पर 10 मर्तबा दुरूद भेजा अल्लाह ताला उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। जिसने मुझ पर 100 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा रब्बे करीम उस पर 1000 रहमतें नाजिल फरमाता है। यहां तक तो मल्टीप्लीकेशन चल रही है, एक दुरूद पाक पर 10 रहमतें। अब फरमाया, जिसने मुझ पर 1000 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा, मेरे आका फरमाते हैं थोड़ी तवज्जो चाहूंगा। हम बाज़ औकात मस्जिद में जब सफ़े दुरुस्त करने का ऐलान होता है तो इमाम साहब ये ऐलान करते हैं कि कांधे से कांधा मिला लीजिए ताकि सफ़े दुरुस्त हो जाए, और जिसका कांधा किसी से मिल रहा हो इट मींस वो बिल्कुल लगो लग उसके साथ खड़ा है। और एक गुलाम होने की हैसियत से एक उम्मती की तमन्ना ये होती है कि कोई ऐसा करम हो जाए कि आकाए मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे जन्नत में जाना मिल जाए। यही तो मनना है ना, बागे जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे हम उठाते जाएंगे, खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। अब ये तमन्ना है, हमारी ख्वाहिश है कि बस आका अपने पीछे पीछे ले जाएं, बट गौर कीजिए वालिये कौनैन बशारत क्या दे रहे हैं, इनाम क्या सुना रहे हैं कि जिसने 1000 बार मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा जन्नत के दरवाजे पर हम इस तरह दाखिल होंगे कि उसका कांधा मेरे कांधे से छू रहा होगा। गोया नबी पाक अपने साथ जन्नत में ले जाएंगे। अब और इससे बढ़कर एक गुलाम के लिए क्या इनाम होगा। आज आपके पास मेरे पास फजूल बातों के लिए टाइम है, टेलीफोन पर बहुत सारा वक्त गुजारने के लिए टाइम है, एसएमएस करने और उसका जवाब देने का वक्त है, सोशल मीडिया पे बहुत सारे काम करने का वक्त है, मगर अपने इस पूरे दिन के अंदर हम कितने दुरूद पाक पढ़ते हैं, कितनी बार अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करते हैं। ऐ मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये जरा गौर करने वाली बात है। अब आप कहेंगे जनाब बड़ी बिजी लाइफ है, बड़ी आजकल इतना टफ शेड्यूल होता है, बहुत मुश्किल है वक्त निकालना। हम बहुत सारे वक्त को अगर गौर करें ना, टाइम मैनेजमेंट कोर्स हो सकता है आप में से कई लोगों ने किया होगा, टाइम मैनेजमेंट प्लान बयान किए जाते हैं कि लोग अपनी जिंदगी को किस तरह अच्छे अंदाज से शेड्यूल कर सकते हैं। अगर गौर करें तो हम में से बहुत सारे लोग वो हैं जो रोजाना ड्राइव करते हैं, या ड्राइव करते हैं या गाड़ी में कुछ वक्त गुजरता है, या फिर किसी के ट्रांसपोर्टेशन में वक्त गुजरता होगा, मोटरसाइकिल पर वक्त गुजरता होगा। बहुत सारे लोगों की किसी ना किसी वजह से वॉक 15-20 मिनट आधे घंटे की जाना आना ऑफिस फैक्ट्री मस्जिद बहुत सारी जगहों पर अगर कैलकुलेट करें तो ये आधे घंटे की पैदल चलने वाली वॉक भी हमारी हो जाती है। मगर बदकिस्मती से बहुत बड़ी तादाद वो है जो अपने इस टाइम को भी गुनाहों में सर्फ करती है। लोग गाड़ी में बैठते हैं तो भी गाड़ी में म्यूजिक लगा लेते हैं, बाइक चलाने वालों को भी देखा कि कान में जनाब हेडफोन लगाया और वहां भी जनाब म्यूजिक चल रहा है। जरा सोचिए अगर इसी टाइम को कैलकुलेट कर लें और हम चलते फिरते उठते बैठते दुरूद पाक को अपना विर्द बना लें, एक दुरूद पाक 10 रहमतों का नुज़ूल, 10 दुरूद पाक 100 रहमतों का नुज़ूल, 100 दुरूद पाक 1000 रहमतों का नुज़ूल। मुझे बताइए जो घर से निकला दुरूद पाक उसकी जबान पर है, उसके ऊपर रहमतें बरस रही हैं, वो कैसे मुश्किल में आ सकता है, वो कैसे आफत में आ सकता है, वो कैसे नुकसान उठा सकता है। प्रॉब्लम ये है हम घर से निकलते ही रब को नाराज करने वाले काम शुरू कर देते हैं। हमारे असलाफ की जिंदगी का ये तरीका रहा कि वो जिस रास्ते से गुजरते जिक्रुल्लाह करके गुजरते। एक बुजुर्ग के बारे में आता है, आपने एक रास्ता क्रॉस किया वापस आए फिर उसी रोड पर चलने लगे, लोगों ने कहा आप चले गए थे रास्ता क्रॉस कर चुके थे वापस आकर इसी रोड पे वापस चल रहे हैं। फरमाया रास्ता तो क्रॉस कर लिया, मुझे याद आया कि मैंने इस गली में अल्लाह का जिक्र नहीं किया, मैं इसलिए वापस आया हूं ताकि हर हर रास्ते को हर हर गली को मैं अल्लाह के जिक्र का गवाह कर लूं। मगर जरा अपोजिटली देखिए कि मैं और आप इन रास्तों को किन बातों का गवाह कर रहे हैं, मैं और आप इस जमीन को रब की जमीन को किन बातों का गवाह कर रहे हैं। बहरहाल आज इस इज्तिमा में आए हैं, नियत कीजिए कि इंशाअल्लाह कसरत के साथ अपने आका और मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ेंगे। आइए मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, आजकल हर शख्स अपनी जिंदगी में कोई ना कोई प्लान बनाता है, कोई ना कोई लाए अमल तैयार करता है, कोई गोल कोई हदफ कोई टारगेट तय करता है। मिसाल के तौर पे कोई स्टूडेंट होता है, वो सोचता है कि मैंने अभी चूंकि मैट्रिक करना है, मैट्रिक के बाद अब उसने कोई राह मुतायन करनी होती है कि मैंने साइंस लेना है या जनाब कॉमर्स लेना है और आगे जाकर हायर एजुकेशन में कहां तक पहुंचना है। वो अपनी जिंदगी का कोई टारगेट कोई हदफ कोई प्लान बनाता है। कोई बिजनेसमैन होता है, जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो सोचता है कि आज एक दुकान है लेकिन ऐसा कोई कोशिश करूंगा कि कुछ ब्रांचेस मजीद खुल जाएं, फिर फैक्ट्री लगाने की नौबत आ जाए, एक फैक्ट्री है तो अगले 5 सालों में 2 फैक्ट्री हो जाएं। बंदा अपने बिजनेस का भी प्लान करता है। कुछ लोग अपनी फैमिली का प्लान करते हैं कि मेरे बच्चे हैं, मैंने इन बच्चों को कहां तक पहुंचाना है, कैसे पढ़ाना है, किस तरह उनको ग्रूम करना है। हर शख्स गोया, अगर यहां बैठे हुए जितने लोग हैं उन सबसे मैं बात करूं कि भाई आपने अगले 5 साल का क्या प्लान बनाया है, तो हर शख्स के जहन में कुछ ना कुछ प्लान होगा। ये अलग बात है कि वो प्लान पूरा होता है कि नहीं, अचीव होता है कि नहीं, हम हासिल कर पाते हैं कि नहीं, मगर मौजूदा दौर में जिंदगी गुजारने के लिए लोग कुछ ना कुछ प्लानिंग जरूर करते हैं। लेकिन आज इस बयान में, इस मुख्तसर से इज्तिमा में, मैं और आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ टू प्लान अवर लाइफ, अपनी जिंदगी को हम किस तरह प्लान करें, या जिस तरह हम प्लानिंग कर रहे हैं ये दुरुस्त है, या हमारी शरीयत हमें कोई प्लानिंग देती है। आज कुरान, हदीस और बुजुर्गाने दीन के अकवाल की रोशनी में समझेंगे कि उन्होंने दुनिया में रहकर किन बातों को हदफ बनाया और किस तरह अपनी जिंदगी को प्लान किया। कुरान पाक की आयात की तरफ चलूं, प्यारे इस्लामी भाइयों, ये बात समझना बहुत जरूरी है कि मुझे और आपको किस मकसद के लिए बनाया गया है। जब तक किसी भी चीज का पर्पज ऑफ क्रिएशन समझ नहीं आएगा तो वो चीज का इस्तेमाल हम दुरुस्त नहीं करेंगे। बहुत आसानी से समझने की बात है, आप में से कईयों के पास गाड़ी है, गाड़ी क्यों बनाई जाती है कि बंदा उसमें आसानी के साथ सवारी कर ले। वो गाड़ी जब सवारी के काबिल नहीं रहती तो फिर वो गार्बेज कर दी जाती है, बेच दी जाती है, स्क्रैप कर दी जाती है। यानी जो चीज जिस मकसद के लिए बनाई गई अगर उस मकसद पर काम आती है तो जनाब वो काम की है, वरना उसके अलावा उसकी कोई जरूरत नहीं। कलम देख लें, आप में से कईयों की जेब में कलम होगा, सीने से लगा के रखते हैं, लेकिन कब तक? जब तक लिखता रहता है। मकसद खत्म हुआ, उस कलम ने लिखना बंद किया, अब उसे कोई सीने से नहीं लगाता। चप्पल आपके पैरों को सुकून पहुंचाने, आपके सफर को आरामदेह करने के लिए बनाया गया, पर्पज ही यही है उसका, उसका मकसद ही ये है, लेकिन वो आपके पैरों की जीनत उसी वक्त तक रहता है जब पैर को आराम पहुंचाता है। एक स्टेज आता है, चप्पल फट जाता है, पुराना हो जाता है, उस चप्पल को पैरों से अलग कर दिया जाता है। बहुत तवील फहरिस्त है जिंदगी की तमाम चीजों को अगर आप देखते चले जाएं कि हर चीज के बनाने का कोई मकसद, और जब तक वो चीज अपने मकसद पर कायम रहती है बंदा उससे फायदा उठाता है। कभी हमने ये सोचा कि मुझे और आपको क्यों बनाया गया है? हम भी तो क्रिएटिविटी है अल्लाह ताला की, हम भी तो मखलूक हैं, हमें अशरफुल मखलूकात कहा है। सारी मखलूक को बनाने का मकसद, मुझे बेमकसद बनाया गया? ऐसा नहीं। पहले मकसद पर आइए कि क्यों बने हैं हम, और फिर देखना यह होगा कि क्या हम अपने मकसद पर चल रहे हैं। तो प्लानिंग को भी मद्देनजर रखना है और अपने बनाए जाने के मकसद को भी जहन में रखना है। प्लान बनाने वाले बहुत सारे प्लान बनाते हैं। एक ऐसा ही प्लानर था, एक ऐसा ही शख्स था जिसने कुछ प्लान बनाया और उसका क्या हाल हुआ, पहले मैं वाकया सुनाता हूं। मनकूल है कि एक शख्स बड़ा नेक था, परहेजगार था, उसको एक सोने की ईंट कहीं से हाथ लग गई। अब जब ब्रिक ऑफ गोल्ड, सोने की ईंट हाथ लगी तो वो हैरान परेशान कि इतना बड़ा खजाना। अब रात भर उसको नींद ना आई, फैंटासाइज होता रहा, मंसूबे बनाता रहा कि अब तो जनाब इतनी बड़ी दौलत मिल गई है, अब मैं बहुत कुछ इससे करूंगा, बेहतरीन लिबास सिलवाऊंगा, बहुत सारे खादिम, बड़ा सा घर। सारी रात वो इसी प्लानिंग में जागता रहा, उसे नींद ना आई कि अब मेरी जिंदगी के प्लान कुछ और होंगे, क्योंकि इतना बड़ा खजाना मेरे हाथ लग गया है। अब यकसर गाफिल इसी धुन में मगन घर से निकला, अचानक इत्तिफाकन कब्रिस्तान के करीब से उसका गुजर हुआ तो देखता है कि एक शख्स ईंटें बनाने के लिए एक कब्र पर मट्टी गोंद रहा है, यानी कब्र की मट्टी से ईंटें बना रहा है। अब जब इसने ये देखा तो यकदम उसकी आंखों से गफलत का पर्दा हटा कि मैं तो दुनिया की रंगीनियों में और दुनिया के जनाब प्लानिंग में मुलव्वस हूं, प्लान कर रहा हूं, और एक वक्त आएगा कि मेरी कब्र की मट्टी से भी ईंटें बनाई जाएंगी, लोग ईंटें बनाएंगे, आह मेरे आलीशान मकानात और उम्दा मलबूसात वगैरह धरे के धरे रह जाएंगे। लिहाजा सोने की ईंट से दिल लगाना तो सरासर गफलत में जिंदगी को गंवाना है। हाँ, अगर दिल लगाना ही है तो मुझे अपने प्यारे अल्लाह अज़्ज़वजल से दिल लगाना चाहिए। चुनाचे उसने सोने की ईंट को तर्क किया और ज़ोहदो कनात को इख्तियार कर लिया। ये एक बंदे का प्लान था जिसने अपने प्लान से यू टर्न लेकर अपनी जिंदगी को राइट टर्न पर ले लिया। अब मैं और आप अपने अपने प्लान्स को जहन में रखें बहुत सारे प्लान होंगे, 5 साल बाद ये करना है, 10 साल बाद ये करना है। और आइए अब मैं आपको अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद से चंद आयतें सुनाता हूँ। मेरा रब अज़्ज़ वजल हमारी क्या रहनुमाई फरमाता है, हमें बनाया क्यों गया है और हमें कौन सा प्लान बनाना चाहिए, कौन सा अंदाजे जिंदगी अपनाना चाहिए, कौन से रास्ते को मुतय्यन करना चाहिए। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, सुनाचे मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, सूरह मोमिनून में इरशाद क्या होता है, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबतौ व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। तर्जमा कंजुल ईमान, तो क्या ये समझते हो कि हमने तुम्हें बेकार बनाया है और तुम्हें हमारी तरफ फिरना नहीं, गोया झंझोड़ा जा रहा है। देयर इज एनी पर्पज ऑफ योर क्रिएशन, कोई वजह है जिसमें तुम्हें बनाया गया। और इस पर्पज को, इस मकसद को कुरान एक और जगह बयान करता है, कुरान पाक में इरशाद होता है, वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। कुरान पाक कहता है, जिसका तर्जुमा है, और मैंने जिन और आदमी इसीलिए बनाए, इसीलिए यानी पर्पज यही है, क्यों, कि वो मेरी बंदगी करें। यानी मेरी और आपकी क्रिएशन का मकसद जो है वो अल्लाह की इबादत है, बनाया ही रब की इबादत के लिए गया है। लेकिन हम और आप किस प्लानिंग में हैं मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, सोचने की बात है। अभी तक हमने एग्जाम्पल के जरिए समझा था कि जो चीज मकसद से हट जाती है वो डिस्ट्रॉय कर दी जाती है। मेरे और आपके बनाने का मकसद मेरा रब फरमा, जिसने बनाया वही बताएगा ना, मैं और आप तो डिसाइड नहीं करेंगे कि मेरा और आपका बनाने का मकसद क्या है। बनाया रब ने, खालिक वो है, उसी ने पैदा किया, वो फरमा रहा है। क्या फरमा रहा है, फिर सुनिए, वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। हमने नहीं पैदा किया इंसान और जिन्नात को मगर इसलिए कि मेरी बंदगी करें। ऐ मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये वो आयात हैं जो हमें बता रही हैं। मजीद मजीद आगे सुनिए कुरान पाक क्या फरमाता है, हमें झंझोड़ा जा रहा है। कुरान पाक फरमाता है, बेशक मुराद को पहुंचा जो सुथरा हुआ, वज़कर रस्मा रब्बिही फसल्ला, और अपने रब का नाम लेकर नमाज पढ़ी, बल तुसिरून अल हयात दुनिया, बल्कि तुम जीती दुनिया को तरजीह देते हो, वल आखिरतु खैरुम व अबका, और आखिरत बेहतर है और बाकी रहने वाली। कुरान कहता है दुनिया को तरजीह देते हो, प्रियोरिटी दुनिया है, बाकी रहने वाली तो आखिरत है। ऐ मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, बहुत सारी आयात में अल्लाह ताला ने जगह जगह कुरान मजीद फुरकान हमीद में हमें अपनी हयात का मकसद बताया और किस तरह जिंदगी को प्लान करना है वो बताया गया। ऐ मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, सैयदना हसन बसरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्या फरमाते हैं, जल्दी करो, जल्दी करो, तुम्हारी जिंदगी क्या है, यही सांस तो है, अगर रुक जाएं तो तुम्हारे इन आमाल का सिलसिला भी मुनकते हो जाएगा, और जिनसे तुम अल्लाह अज़्ज़ वजल का कुर्ब हासिल करते हो वो काम भी जल्दी कर लो, क्योंकि सांसें ही हैं, जो रुक गई तो फिर कुछ ना कर सकोगे। अल्लाह अज़्ज़ वजल उस शख्स पर रहम फरमाए जिसने अपना जायजा लिया और अपने गुनाहों पर चंद आंसू बहाए। ये कहने के बाद सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला ने इन आयतों की तिलावत की, चुनाचे सूरह मरियम आयत नंबर 84 की तिलावत करते हुए फरमाते हैं, इन्नमा नउद्दु लहुम अद्दा। कुरान कहता है, तर्जमा कंजुल ईमान, हम तो इनकी गिनती पूरी करते हैं। इस आयत की तफसीर में इमाम गजाली फरमाते हैं, यहां गिनती से सांसों की गिनती मुराद है, काउंटिंग चल रही है, मेरी और आपकी सांसें एक तय है और ये उसकी काउंटिंग चल रही है, ये गिनती पूरी हो रही है। हजरत सैयदना इमाम बैहकी अलैहि रहमतुल्लाहिल कवि शोबुल ईमान में नकल करते हैं, मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान इबरत निशान है, रोजाना सुबह जब सूरज तुलू होता है तो ऐलान करता है, क्या ऐलान होता है, अगर कोई आज अच्छा काम करना है तो कर लो, आज के बाद मैं कभी पलट कर नहीं आऊंगा। रोजाना दिन ऐलान करता है, टू डू, आज का दिन है कर लो, कल मैं फिर दोबारा कभी नहीं आऊंगा। आज कारोबारी लोगों की जबान पर यह बात होती है, जो करना है अभी कर लो, हैं? सीजन है कमा लो, इसी वक्त से फायदा उठा लो, हमारी जहन में यह बात जरूर होती है कि यह टाइम गुजर रहा है, मगर हम इस कम टाइम में दुनिया ज्यादा कमाने की फिक्र कर रहे हैं। कभी ये सोचा कि आखिरत कमाने के लिए भी यही टाइम है, यही दिन है, यही घड़ियां हैं। इसमें जितनी नेकियां, जितने रब को राजी करने वाले काम कर लेंगे वो हमारी आखिरत में हमारे काम आएंगे। ऐ मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, कुरान मजीद में पारा 30 सूरह इंशिकाक आयत नंबर 6 में 6 में इरशाद होता है, कुरान मजीद हमें याद दिला रहा है, अफसोस तो ये है आज नावल पढ़ने का टाइम है, अखबार पढ़ने का टाइम है, आज हमें कुरान पढ़ने का टाइम नहीं। कुरान पढ़ते हैं तो समझते नहीं। जा बजा कुरान मजीद ने हमें कहा है, हमें पुकारा है, सुनिए क्या किस अंदाज से हमें याद दिलाया जा रहा है। या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी, तर्जमा कंजुल ईमान, ए आदमी बेशक तुझे अपने रब अज़्ज़ वजल की तरफ जरूर दौड़ना है और उससे मिलना है। हम क्यों भूल बैठे हैं कि हमें रब की बारगाह में जाना है। आला हजरत अपने कलाम में लिखते हैं ना, घर भी जाना है मुसाफिर के नहीं, याद दिलाते हैं ये घर नहीं, घर भी जाना है मुसाफिर के नहीं, मत पे क्या मार है क्या होना है, दूर जाना है रहा दिन थोड़ा, राह दुश्वार है क्या होना है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, खुदारा कुरान पाक के इस पैगाम को कबूल कीजिए। प्लानिंग बहुत सारी है मगर कहीं ऐसा तो नहीं हम असल प्लान से दूर होते जा रहे हैं। मजीद सुनिए ऐ मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, वो लोग जो अपनी जिंदगी को फकत अपनी लाइफ को बनाने की फिक्र करते हैं, लोग कहते हैं मैं जनाब बहुत बिजी होता हूं इसलिए नमाज नहीं पढ़ सकता, मैं बिजनेस में बड़ा बिजी हूं इसलिए जनाब नेकी के कामों के लिए वक्त नहीं निकाल सकता, मैं अपनी फैमिली को अपने बच्चों को वक्त देता हूं इसलिए मैं दीन के काम को वक्त नहीं दे सकता। यकीनन अपने बच्चों की तरबियत के लिए वक्त देना चाहिए मगर हमने आज एक आयत कुरानी सुनी है कि मुझे और आपको बनाया किस लिए गया है। एक और कुरान पाक की आयत सुनिए, कुरान कहता है लोगों का हिसाब नजदीक और वो गफलत में मुंह फेरे। जिंदगी खत्म होती जा रही है और गफलत भी बढ़ती चली जा रही है। ऐ मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, वक्त जो है ना, ये टाइम, वापस आता हूं शुरू में जो बात की थी कि टाइम मैनेजमेंट पर लोग बड़ा प्लान करते हैं कि जनाब वक्त को किस तरह यूज किया जाए, बड़े इसके फ्रेजेस हैं, बड़े इसके अंदाज हैं। लोग कहते हैं जनाब अगर अपने टाइम को बचाना है तो लोगों से क्लोज एंड सवाल करो, बड़ी दिलचस्प बात करते हैं समझाने वाले, क्लोज एंड क्वेश्चन किया करो ताकि जल्द वक्त में ज्यादा मालूमात लेकर बात खत्म हो जाए, दूसरे बंदे को डील करो। क्लोज एंड क्वेश्चन क्या है, पूछे क्या नाम है आपका, वो नाम बता देंगे, तबीयत कैसी है, ठीक है, आप कहां से आए हैं, शहर का नाम भी आपको मिल जाएगा। ऐसा सवाल ना करें जिसका जवाब खत्म होने वाला ना हो, और सुनाए कैसी गुजर रही है, अब इस सवाल के जवाब में वो आधे घंटे की भी गुजार सकता है। तो टाइम मैनेजमेंट वाले लोग समझाते हैं कि अगर दुनिया में ज्यादा काम करना है तो क्लोज एंड क्वेश्चन करें, वो दुनिया के लिए। लेकिन क्या हमने कभी इस बारे में सोचा ये वक्त कितनी कीमती शय है। जन्नत में जाने वाला तो खुश नसीब है ना, वो तो अबदी ऐश और मजे करेगा, मगर मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अहले जन्नत को किसी चीज का अफसोस नहीं होगा सिवाय उस घड़ी के। अहले जन्नत भी किसी वजह से अफसोस करेंगे, जन्नत में पहुंच गए फिर भी, फरमाए सिवाय उस घड़ी के, दुनिया में वो घड़ी अल्लाह अज़्ज़ वजल के जिक्र के बगैर गुजर गई कि काश उस वक्त में भी जिक्र कर लेते और कमा लेते और नेकियां मिल जाती और अजर मिलता और इनाम मिलता, वो वक्त क्यों जाया किया, जन्नत में जाकर जन्नती अफसोस करेगा। मगर आज मैं और आप सोचें हम अपने वक्त को किस कदर जाया कर रहे हैं, वो वक्त किन कामों में गुजर रहा है, जरा गौर करने वाली बात है। डे बाय डे वी आर गोइंग टूवर्ड्स अवर आखिरा, हम अपनी कब्र अपनी आखिरत की तरफ जा रहे हैं। इस बात को तो एग्री करेंगे आप कि हर गुजरने वाला दिन मुझे अपनी कब्र और अपनी मौत के करीब कर रहा है। आज अगर मेरा कोई भाई 40 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई 30 साल से अबव हो चुका है, वो सोचे कि अगर एवरेज लाइफ भी उसके मुकद्दर में है, अव्वल तो जिंदगी का किसी को भरोसा नहीं, नौजवान भी चले जाते हैं, अगर एवरेज लाइफ 60 के बिटवीन जो लाइफ है अगर उसके नसीब में है तो भी वो हाफ लाइफ और उससे ज्यादा लाइफ गुजार चुका, डे बाय डे कब्र के करीब। लेकिन क्या कब्र के करीब होते हुए हमारी नेकियां बढ़ रही हैं, हर गुजरने वाला दिन हमें रब के करीब कर रहा है। स्टूडेंट भी बैठे नजर आ रहे हैं मुझे, आपका जब इम्तिहान करीब होता है आपका एटीट्यूड क्या होता है, जैसे जैसे इम्तिहान करीब आता है तैयारी बढ़ती चली जाती है, परेशानी बढ़ती जाती है, नींद नहीं आती, क्यों इम्तिहान करीब है, और जैसे जैसे कब्र करीब आ रही है हम गफलत का शिकार होते जा रहे हैं, हम अल्लाह ताला की बारगाह में पेश होने को भुलाए चले जा रहे हैं। यानी तैयारी कब करेंगे, कोई नोटिस नहीं आना कि हजरत आपके जाने का वक्त 2 महीने बाद है, तैयारी कर ले। नहीं, अच्छा खासा नौजवान रात को सोता है, सुबह आंख नहीं खुलती, पता भी नहीं चलता। तो क्यों ना हम दुनिया में रहकर अपनी उस आखिरत की तैयारी करें। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, वक्त पर बात हो रही है, ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। हाफिज इब्ने असाकर अपनी किताब तबयीनु किज़बिल मुफ्तरी में फरमाते हैं, 5वीं सदी के मशहूर बुजुर्ग हजरत सैयदना सलीम राजी का कलम जब लिखते लिखते घिस जाता तो नोक तराशते, और अगर ये दीनी तहरीर, ये नोक तराशना भी सवाब का काम है क्योंकि दीनी तहरीर के लिए वक्त होता, तो उस वक्त जिक्रुल्लाह करना शुरू कर देते ताकि जितनी देर में ये पेंसिल शॉप होगी वो वक्त भी अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना गुजरे। ये हमारे असलाफ का तरीका, एक एक लम्हे की कदर। और अब मैं आपको थोड़ा सा लॉजिकली समझाता हूं कि ये लम्हा, ये वक्त, ये जो मिनट्स किस कदर कीमती है और इसमें हम किस कदर कमा सकते हैं। कहिए सुभान अल्लाह, जरा जोर से कहिए, कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, कहिए अल्लाहु अकबर, ठीक है, कहिए ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब सुनिए, इब्ने माजा की हदीस पाक सुना रहा, नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान, जो 4 कलमे आपने पढ़े ना, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, जो भी इसमें से कलमा कहेगा, कोई भी एक कलमा, उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाएगा। विद इन अ सेकेंड प्लांट इन द पैराडाइज, जन्नत में दरख्त लग रहा है एक बार सुभान अल्लाह कहने से। इट मींस ये कितनी कीमती सौगात है मेरे हाथ में जिसे मैं जाया कर रहा हूं। दिल पर हाथ रखकर पूछें, अगर मैं ये कह दूं कि जनाब जो एक बार सुभान अल्लाह कहे उसको 1 रुपया मिलेगा, फकत 1 रुपया, तो बताएं लोग रोज के 10,000 बार सुभान अल्लाह कहेंगे। बंदा मोबाइल फोन भी बंद कर देगा, दोस्तों को भी कहना जनाब 1-2 महीने की छुट्टी ले रहा हूं, मैं एक नया बिजनेस ढूंढ लिया है। अब जरा सोचें, दुनियावी माल, दुनियावी दौलत के लिए जिनका सीजन लगता है, आपने भी देखा होगा कपड़े के ताजिरान बैठे हैं, मुख्तलिफ कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। वेन एवर वी हैव अवर सीजन, जब हमारा सीजन होता है बंदे रात नहीं सोते, कहते हैं यार यही 1 महीना काम करने का है, बड़ा टाइट शेड्यूल करता हूं इसलिए कि सीजन को ज्यादा से ज्यादा जनाब इसमें कमा लूं। जब दुनिया के लिए मैं और आप इतना सोचते हैं, मेरे आका की हदीसे पाक है ना, ये कोई मैं आपको किसी और किताब की बात नहीं कर रहा, नबी के सच्चे वादे हैं कि जो एक बार सुभान अल्लाह कहेगा उसके लिए जन्नत में एक दरख लगा दिया जाएगा, जो एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा जन्नत में दरख लगा दिया जाएगा। तो क्यों अल्लाह का जिक्र ना करें। अभी थोड़ी देर पहले आपने आकाए दो जहां की हदीसे पाक सुनी, एक बार दुरूद पाक पढ़े अल्लाह ताला 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा। दूसरी हदीसे पाक सुने, जो एक बार दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह तबारक व ताला उसके 10 गुना मुआफ फरमा देता है, उसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। गोया मैं चंद मिनटों में नेकियों का खजाना इकट्ठा कर सकता हूं, मगर ये वो वक्त है जिसको मैं जाया कर रहा हूं, इस वक्त को मैं रब की नाफरमानी में इस्तेमाल कर रहा हूं। खुदा की कसम, प्लान तो सहाबा इकराम ने किया, अपनी जिंदगी को डिजाइन अल्लाह वालों ने किया कि अपनी इस जिंदगी में रहकर अपनी आखिरत को बेहतर कर गए। मैं और आप ये प्लान करके जी रहे हैं कि घर हवादार हो, मैं और आप ये प्लान करके जी रहे हैं कि छोटी कोठी है जनाब 10 मरले की, ये कनाल की हो जाए, एक कनाल की कोठी 4 कनाल की हो जाए, फला चौधरी साहब ने इतना बड़ा घर बनाया, अब मैंने अपने घर को बड़ा बनाना है, और इसी तकोदो में बूढ़े हो गए और जनाब घर बनाते बनाते दुनिया से चले गए। अगर ये प्लान करते कि जिस कब्र में रहना है वो जन्नत का बाग बन जाए, वो कब्र नूर मुस्तफा से जगमगा जाए, उस कब्र में जन्नत की खिड़की खुल जाए, असल प्लान तो वो है, क्योंकि इस घर में 50, 60, 70 साल जी लूंगा, उस कब्र में कयामत तक मुझे अकेले रहना है, वो कब्र कैसी होगी उसकी प्लानिंग कौन करेगा। मैं अल्लाह की बारगाह में जब हाजिर हूं, जब सुरखुरू हूं, मेरा नामा आमाल नेकियों से भरा हुआ हो, अरे बैंक बैलेंस नोटों से भरा हो और नामा आमाल नेकियों से खाली हो, ये कैसी प्लानिंग है। प्लानिंग तो वो अच्छी है कि जब अल्लाह की बारगाह में पहुंचूं तो कहीं खुसरान का शिकार ना हो जाऊं, मेरा नामा आमाल खाली ना हो اور میرے پاس رب کی بارگاہ میں جواب دینے کو کچھ نہ ہو. پلان تو وہ اچھا ہے جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں, میرا نامہ اعمال کھلے تو میرے نامہ اعمال میں ذکر اللہ ہو, میرے نامہ اعمال میں پانچ وقت کی نمازیں ہوں, میرے نامہ اعمال کے ہر پیج پر درود پاک ہو, میرے نامہ اعمال کے ہر صفحے پر اللہ کا ذکر اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یادیں ہوں, لوگوں کے ساتھ خیر خائی ہو, لوگوں کے ساتھ بھلائی ہو, غریبوں کی مدد کرنا شامل ہو, میرے نامہ اعمال میں مسلمانوں کے لیے اچھے جذبے لکھے ہوں. وہ کتنا بد نصیب ہے کہ اس کے ہر دن کے نامہ اعمال کا جو پیج ہوگا اس میں پانچ وقت قضا نماز لکھی ہوگی, جس کے ہر پیج پر فلمیں ڈرامے گانے باجے لکھے ہوں گے, جس کے ہر پیج پر بد نگاہی لکھی ہوگی, بے حیا عورتوں کو دیکھنا لکھا ہوگا, معاذ اللہ بدکاری اور شراب پینے والا سوچے کہ اس کے نامہ اعمال میں یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے. آج کوئی نہیں دیکھتا, ہم سمجھتے کوئی نہیں دیکھ رہا, اکیلے میں گناہ کر رہا ہوں نا, کسی کو نہیں پتا. یا تو بات بنا لیتے, نہیں نہیں میں نے نہیں کیا, آپ کو غلط فہمی حضرت, میں نہیں تھا کوئی اور ہوگا, بنا کے چھپا کے گناہ کر کے لوگوں میں اپنی عزت میں بنا لیتا ہوں. امام اہل سنت لکھتے ہیں, وہاں نہیں بات بنانے کی مجال, وہاں ٹوسٹنگ نہیں چلے گی, وہاں بھانے نہیں چلیں گے, وہاں نہیں بات بنانے کی مجال, وہاں ماننا پڑے گا. ارے بندہ نہیں مانے گا, روایتوں میں آتا ہے ایک بندہ گناہگار اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا, اس پر اس کے گناہ پیش کیے جائیں گے کہ تو نے یہ گناہ کیا, تو نے یہ گناہ کیا, تو نے بدکاری کی, تو نے جناب بے حیائی کی, تو نے حرام کمایا. وہ سوچے گا کہ جب میں نے یہ کام کیے اس وقت تو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, وہ رب کی بارگاہ میں انکار کر دے گا, ڈینائی کر دے گا, نہیں میں نے نہیں کیا. رب عز و جل فرمائے گا آج کے دن ہم گواہ پیش کریں گے, وہ سوچے گا گواہ تھا ہی نہیں تو کہاں سے ایویڈنس آئے گا. سورہ یاسین کئی بار پڑھی میرے پیارے اسلامی بھائیوں, خدارا ترجمے کے ساتھ پڑھو, سیکھو قرآن میں رب نے کیا فرمایا ہے. اس کی ایک آیت ہے, الیوم نختم علی افواہہم, اس دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے, ہاتھ کلام کریں گے, گواہ نہیں چاہیے, یہ میرے اور آپ کے ہاتھ گواہی دیں گے, ہاں مولا میں نے ان ہاتھوں سے حرام کیا تھا, یہ ہاتھ بولیں گے کہ میں نے کسی پر ظلم کیا تھا, ان ہاتھوں سے یہ بے حیائی کے کام کیے تھے, پیر گواہی دیں گے کہ میں برائی کے اڈے کی طرف گیا تھا. کیوں نہ میں ایسی زندگی گزاروں کہ قیامت کے دن شرمندہ نہ ہونا پڑے. اپنی زندگی کو خدارا یوں پلان کریے, یہ دنیا جو ہے نا, پہلے سمجھیے دنیا ہے کیا. حدیث پاک میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر, یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. تو یہ میرے اور آپ کے لیے قید خانہ ہے, یہ جنت نہیں. ارے جنت تو ہمارے لیے رب نے آخرت پہ بنا کر رکھی ہے. آج طے کیجئے کہ آج عیش کرنے ہیں, آج اللہ کی نافرمانی والے کام کرنے ہیں, یا کل کی عیش و عشرت حاصل کرنی ہے. تھوڑا سا کمپیریٹیولی اگر میں اور آپ سوچے نا, میرے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں کہ آج بے پردہ بے حیا نا محرم لڑکیوں سے جو دوستیاں کرتے ہیں, آج اپنے نفس پر کنٹرول کر لو, آج بدکاری نہ کرو, آج ان بے حیا عورتوں کی طرف نہ جاؤ, تھوڑی سی زندگی ہے صبر کر لو, رب نے جنت میں حوریں تیار کر رکھی ہیں. اب یہ آپ پر منحصر ہے, آپ کی چوائس ہے کہ دنیا میں ان بے حیا عورتوں کو حاصل کرنا ہے یا تھوڑا انتظار کر کے جنت کی نہ ختم ہونے والی نعمتوں کو اور ان حوروں کو حاصل کرنا ہے. آج شراب پینے والا سوچے, دنیا میں جو گندی ناپاک بدبودار شراب پیتا ہے, وہ شراب جس کو پینے کے بعد نہ ماں ماں لگتی ہے, نہ بہن کا کوئی تقدس باقی رہتا ہے, قتل تک کر دیتے ہیں لوگ شراب پی کے. ارے کیوں پیتے ہو یہ گندی شراب, انتظار کر لو, جنت میں جاؤ گے تو رب نے شراب طہور تیار کر رکھی ہے. آج یہ طرح طرح کے تراش خراش والے لباس پہننے والا سوچے کہ میں نے یہ فیشنیبل انگریزوں والا لباس پہننا ہے, برانڈڈ چیزیں پہننی ہیں. ارے آج صبر کر لو, نبی پاک کی سنتوں بھرا لباس پہنو, اپنے آپ کو آقا کا غلام بنا لو, پھر کیا ہوگا, رب نے جنتیوں کے لیے جنتی لباس تیار کر رکھے. اٹس اپ ٹو یو, آپ کی چوائس ہے, ہم نے کیا قبول کرنا ہے. طرح طرح کے کھانے کھانے کا شوقین جو مہنگے مہنگے کھانے کھاتے ہوئے یہ بھی نہیں دیکھتا
क्योंकि उसका लाइफ स्टाइल उसने चेंज कर दिया, अब उसको हलाल कमाना है, हराम कमाना है और तरह तरह के खाने खाने हैं। मैं नहीं कहता कि बड़े रेस्टोरेंट्स में खाना नाजायज है, लेकिन अगर उन खानों को खाने के लिए हराम कमाता है तो वो सब्र करे, सादा गिजा अपना ले, अल्लाह ने जो दिया उस पर कनात कर ले। रब ने जन्नतियों के लिए जन्नती खाने तैयार कर रखे हैं। गोया हर उस चीज का नेमल बदल मौजूद है जिससे मुझे और आपको रोका गया। एक और बड़ी दिलचस्प बात, दाढ़ी आका की सुन्नत है ना, चेहरे पर जो दाढ़ी सजाता है प्यारे आका अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सजाता है। ये वो सुन्नत है जो कब्र में भी साथ जानी है, हैं? बाकी तो सब उतर जाना है, दाढ़ी कब्र में जाएगी। और इंशाअल्लाह ये दाढ़ी कब्र में क्या काम देगी, आला हजरत लिखते हैं, लहद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले। लहद कहते हैं कब्र को। लहद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, मैं कब्र में आका के चेहरे की निशानी ले जा रहा हूं। क्यों? अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। अब नौजवान कहता है, जनाब सारे दोस्त बगैर दाढ़ी वाले, मैं दाढ़ी रखूंगा तो माद अल्लाह अच्छा नहीं दिखूंगा, वो जनाब बड़ा खूबसूरत दिखता है। आपको पता है यहां दाढ़ी रख लो जन्नत में जो जाएगा उसकी दाढ़ी नहीं होगी। जी हां, ये अहदीस में मफूम मिलता है कि जन्नत में हर बंदा 30 साल का होगा और बेरीश होगा। तो मैं मुझे तो जन्नत में जाना है, तो यहां इंशाअल्लाह चेहरे पर दाढ़ी सजाएंगे, आका की सुन्नत सजाएंगे। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे जिंदगी की प्लानिंग किस तरह की होनी चाहिए। अब हमने जिक्र अस्कार भी सुन ली है कि थोड़ी देर में हम किस कदर नेकियां कमा सकते हैं। अब एक हदीस पाक, मेरे आका अली सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े जामे कलाम अता फरमाया। मेरे आका की सुखन की तो क्या बात है, लोग कहते हैं कि जनाब फलां कूजे में दरिया बंद कर देता है, मेरे आका अली सलातु वस्सलाम तो एक ही जुमले में क्या कुछ अता फरमा देते। इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत नबी पाक अली सलातु वस्सलाम के इसी अंदाज बयान को किस खूबसूरत अंदाज में बयान करते हैं। फरमाते हैं, आका मैं निसार तेरे कलाम पर, मिली यूं तो किसको जबान नहीं, मैं निसार तेरे कलाम पर, मिली यूं तो किसको जबान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। वो नबी पाक की एक बड़ी प्यारी हदीस पाक, बड़ी जामे हदीस पाक। मेरे आका फरमाते हैं, इग्तनिम खमसन कबल खमसन, पांच चीजों से पहले गनीमत जानो। शबाब का कबल हरमिक, फरमाया जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो। बहुत सारे नौजवान यहां बैठे हैं, नौजवान समझता है कि जवानी दीवानी है, इस जवानी में मुझे खूब जनाब दुनिया की रंगीनियां उठा लेनी चाहिए, फिर आखिरत में जनाब बूढ़ा हो गया तो फिर मस्जिद का रुख कर लूंगा, अल्लाह अल्लाह कर लूंगा, अभी तो जनाब इंजॉयमेंट के दिन है। मेरे आका फरमाते हैं, देखो जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो, क्योंकि जवान की जो तौबा है ना, जवानी की जो इबादत है, वो रब की बारगाह में कैसी मकबूल है। एक और हदीस पाक है जिसमें मेरे आका ने फरमाया, 7 किस्म के लोग होंगे जिनको अल्लाह के अर्श का साया कयामत के दिन मिलेगा, जिस दिन कोई साया ना होगा, उसमें एक वो शख्स भी होगा जिसकी जवानी इबादत में गुजरी होगी। तो नौजवान मेरे बैठे हैं तो आप पर शैतान ज्यादा हमले करता है, तो मर्द होता है ना, मर्द तो मर्द वो होता है जो शैतान से मुकाबला करे, चैलेंज कबूल करे उसका, कि तू मुझे कहता है नमाज ना पढ़, इंशाल्लाह मैं 5 वक्त नमाज पढ़ के दिखाऊंगा। मर्द तो वो है ना जो शैतान को हराए, शैतान से हार जाए। वो कहे बेहयाई कर ले, मैं बेहयाई कर लूं, वो कहे झूठ बोल, मैं झूठ बोल लूं, वो कहे जनाब नमाज छोड़ दे, मैं नमाज छोड़ दूं, ये कौन सी मर्दानगी है। तो जवानी में शैतान के हमलों का मुकाबला कीजिए और फिर देखिए कि इंशाल्लाह फिर ये बूढ़े जो हो जाते हैं। अच्छा, एक तो बूढ़े होने की गारंटी किसके पास, चले इतने सारे लोग बड़े पढ़े लिखे डिग्री होल्डर्स बैठे हैं, एक सवाल कर लेता हूं, है कोई आप में से ऐसा जिसके पास गारंटी कि 1 महीने तक मैं जिंदा रहूंगा? कोई एक भी नहीं। 1 हफ्ते की गारंटी, 1 दिन की गारंटी, आज यहां से घर खैरियत से जिंदा जाऊंगा उसकी गारंटी, 1 बंदे के पास गारंटी नहीं है। फिर कहते हो बूढ़ा होकर इबादत कर लूंगा, ये कैसा शैतान का वार है, हैं? आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। मुझे जब کل کی خبر نہیں ہے، پل کی خبر نہیں ہے، پلاننگ کی ہوئی ہے 5 سال کی. تو خدا را جس قبر میں آج بھی جا سکتا ہوں اس قبر کی تیاری ہمیں پہلے کرنی چاہیے. نبی پاک نے فرمایا بس صحت کا قبل سقمک، میرے آقا نے فرمایا صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. آج اللہ نے مجھے اور آپ کو صحت دی ہے، کر لو رب کی عبادت، کر لو سجدے، رکھ لو روزے، کر لو نیکی کے کام. پوچھو ان سے جب ہاسپٹل میں بیڈ پہ پڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کاش پیروں میں جان ہوتی تو تراوی پڑھتا، کاش میں کھڑا ہو سکتا تو میں بھی نیکی کے کام کرتا، اب اتنی بیماریاں ہو گئیں میں جناب مسجد کی طرف چل کے بھی نہیں جا سکتا. اللہ نے صحت دی ہے تو کر لو اس کی عبادت، ورنہ پھر بیماری میں بندہ آنسو بہاتا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں تیسری بات، وہ غنا کا قبل فقرک، فرمایا غنا کو یعنی مالداری کو تنگ دستی سے پہلے غنیمت جانو. اللہ نے آج ہم میں سے کئیوں کو بڑا نوازا ہوگا، بندہ کہتا ہے یار واقعی پیسے تو آ گئے لیکن ذرا وہ کام ہو جائے نا پھر اس کے بعد میں مسجد بناؤں گا، ہاں وہ کام ہو جائے تو اس کے بعد فلاں نیکی کا کام کروں گا، پھر جناب یہ والا نیکی کا کام کروں گا. اور انتظار کرتے کرتے آپ نے بزنس مینوں کی دنیا دیکھی ہے، کبھی ایسا پلٹا کھاتا ہے، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بندہ کنگال ہو جاتا ہے، پھر افسوس کرتا ہے کہ جس وقت پیسے تھے اس وقت خوب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا، کوئی بڑے کام کر لیتا، سوچتا ہی رہ گیا اور مال بھی ہاتھ سے چلا گیا. نبی پاک نے آج سے 1450 سال پہلے کب و بیش ارشاد فرما دیا کہ دیکھو غنا تمہاری جو فراخی ہے، اللہ نے مالداری دی ہے، اس کو فقیری سے پہلے غنیمت جانو اور اللہ کی راہ میں خوب خرچ کر دو. اور یہ ہمیشہ یاد رکھے جو رائے خدا میں ہم خرچ کرتے ہیں نا، بیسیکلی انسان بعض اوقات سوچتا ہے یار میں نے 10,000 دے دیے کسی نیکی کے کام میں، یہ 10,000 کم ہو گئے، یہ کم نہیں ہوئے، یہ آپ کے ایک الگ اکاؤنٹ میں جمع ہو گئے ہیں. وہ کمیٹی کہتے ہیں نا کمیٹی ڈالو، کیوں؟ برے وقتوں میں کام آئے گی. بچی کے لیے لوگ کمیٹی ڈالتے ہیں، تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے شادی ہو جائے گی. بیسیکلی یہ کمیٹی ہے، آپ جو راہے خدا میں دے رہے ہیں یہ آپ کے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے، اور اس دن یہ نیکیاں ملیں گی جس دن ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، اور ملٹی پلائی ہو کر ملے گی. تو جیب بھری ہو نا تو اگلے اکاؤنٹ میں ڈالی جایا کرو، جہاں موقع ملے مسجد میں، مدرسے میں، نیکی کے کام میں، اپنے رشتے داروں میں، غریبوں میں، فقیروں میں، جن لوگوں کو آپ سمجھتے ہیں ان کو مدد کی حاجت ہے، جہاں جہاں نیکی کے کام ہیں اگر اللہ نے مجھے نوازا ہے. اچھا کچھ لوگ بڑا گن گن کر بانٹتے ہیں، جب اللہ نے بے گنے دیا ہے، ہماری اوقات سے زیادہ دیا ہے، مجھے آج جتنا کھانا تھا اس سے بہت زیادہ دے دیا، مجھے 2 کپڑے کافی تھے، میری کپڑ بھر گئی، مجھے جناب میرے بچے کھائیں اتنا اس سے زیادہ مال دے دیا، اور میں بانٹتے وقت گنتا ہوں کہ جناب زکات پوری ہو گئی، اب آج اتنا نہیں دینا بس ختم. ارے جب رب نے بے گنے دیا ہے، انکاؤنٹیبل دیا ہے، تو میں کون ہوتا ہوں اللہ کی راہ میں دیتے وقت گننے والا. بانٹو اللہ کی راہ میں، خرچ کرو اللہ کی راہ میں، وہ رب کریم زیادہ عطا فرمائے گا. کیا فرمایا؟ فقیری سے پہلے مالداری کو غنیمت جانو. چوتھی بات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فرماتے ہیں وہ فراغت قبل شغلک، فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو. انسان کی زندگی میں بہت سارے فیز آتے ہیں، بہت سارے دور آتے ہیں، بڑا فارغ ہوتا ہے بعض اوقات، کوئی کام کاج ہیوی نہیں ہوتا، بڑی مصروفیت نہیں ہوتی، اور پھر اچانک ایک دور آتا ہے کہ اتنا مصروف ہو جاتا ہے کسی چیز کے لیے ٹائم نہیں بچتا. تو جب بھی آپ کی زندگی میں فراغت کا دور ہے، ہو سکتا ہے ابھی بہت سارے فارغ ہوں، بڑا ایزیلی کام کرتے ہوں، شام کو بھی فارغ ہو جاتے ہوں، ٹائم ہی ٹائم ہے، اور جب فراغت ہے تو کچھ نیکی کے کام کر لے، قرآن پاک پڑھنا سیکھ لے، تفسیر کے ساتھ پورا قرآن پاک پڑھ لے، رہے نصیب عالم دین کا کورس کر کے عالم بن جائے، فراغت کا ٹائم میں فائدہ اٹھائے، نیکی کے کاموں میں ٹائم دے دے. ورنہ ایک وقت آئے گا کہ بندہ اتنا مصروف ہو جاتا ہے، کہتا ہے کاش جو فراغت کے دن گزرے تھے اس میں کوئی اچھے کام کر لیتا. نبی پاک نے ہمیں گویا اٹینشن دلائی ہے، سنجوڑا ہے کہ دیکھو فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو. اور آخری بات، وہ حیات کا قبل موتک، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. یہ 5 باتیں اگر ہمیں یاد ہو جائیں اور ان 5 باتوں کو ہم اپنے پلو سے باندھ لیں اور اسی طرح زندگی گزارنا شروع کریں تو انشاءاللہ بہت کچھ اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. آپ نے قرآن پاک کی آیات سنی اور احادیث سنی، اب میں چند بزرگان دین کے اقوال سناتا ہوں. دیکھیں انہوں نے کیسے پلان کیا، یہ اس وقت کی کس قدر قدر کرتے تھے. امیر المومنین حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، یہ ایام تمہاری زندگی کے صفحات ہیں، ان کو اچھے اعمال سے زینت بخشو. یہ جو دن ہے یہ زندگی کا ایک صفحہ ہے، اس کو اچھا عمل کر کے خوبصورت کر لو. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابی رسول ہیں، میں اپنی زندگی کے گزرے ہوئے اس دن کے مقابلے میں کسی چیز پر نادم نہیں ہوا جو دن میرا نیک اعمال میں اضافے سے خالی ہو. کہتے ہیں دن گزر گیا، نیک عمل نہ بڑھے، مجھے اس دن میں بڑی شرمندگی ہوتی ہے. یہ ہمارے اسلاف گھنٹوں اور دنوں کی قدر کیا کرتے. اے میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شافعیوں کے امام ہیں، اللہ کے بہت بڑے، کہتے ہیں کہ میں ایک مدت تک اہل اللہ کی صحبت سے فیضیاب رہا، ان کی مجھے دو اہم باتیں سیکھنے کو ملی. نمبر ایک، فرماتے وقت تلوار کی طرح ہے، بڑی پیاری بات ہے، وقت تلوار کی طرح ہے، اس کو اعمال کے ذریعے کاٹو ورنہ یہ فضولیات میں مشغول کر کے تمہیں کاٹ. یہ جو وقت ہے یہ سوڑ ہے، نیک کام کر کے اس کو استعمال کرو ورنہ اس نے تمہیں کاٹ دینا ہے. اور فرمایا اپنے نفس کی حفاظت کرو، اگر تم نے اس کو اچھے کام میں مشغول نہ رکھا تو یہ تم کو کسی برے کام میں مشغول کر دے گا. امیر اہل سنت بھی بڑی پیاری بات کہتے ہیں، کرنے والے کاموں میں لگ جاؤ ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں لگ جاؤ گے. تو اپنے آپ کو بندہ بیزی کر لے آخرت کی تیاری والے کاموں میں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج اس بیان میں چند آیات، احادیث اور بزرگان دین کے اقوال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی کہ جو زندگی ہے، یہ جو وقت ہے جو میرے ہاتھ میں ہے، اس کو کس طرح گزارنا ہے. پہلے تو اس کو قیمتی سمجھیں اور پھر یہ پلان کیجئے کہ دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی میں تیاری کیسے کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، مالک کریم ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت نصیب فرمائے. اور آج چونکہ ایک بیان میں آپ آئے، کچھ دیر شرکت کی، امید ہے کچھ باتیں سیکھی ہوں گی، کچھ ریئلائز ہوا ہوگا، کچھ چینجنگ کا ذہن بنا ہوگا. لیکن ظاہر ہے یہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بیان سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، آپ کو کنٹینیو دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آنا ہوگا. ہر جمعرات کو فیضان مدینہ وہاں پر اجتماع ہوتا ہے، آپ اسلامی بھائی اس اجتماع میں ضرور تشریف لائیں. مدنی چینل اپنے گھروں میں دیکھتے رہیں، انشاءاللہ مدنی چینل کے ذریعے آپ بہت ساری معلومات اپنے گھر بیٹھے انشاءاللہ حاصل کر لیں گے. رب کریم ہمیں اچھے انداز میں اپنے وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
تیرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نکال جانے.